श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा आप अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीख रहे हैं, और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आप यीशु मसीह के बलिदान की बातों को और अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने होम बलि के विषय में एवं विधियों को देखा था। आज हम व्यवस्था की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, और इस अध्ययन में हम अन्न बलि के विषय में देखेंगे, जिसमें मिलाया परंतु नहीं पकाया, मिलाया और पकाया आदि विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें। विषय है अन्न बलि। सभी भेंट बलि मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में बताती है। होम बलि अथवा अग्नि बलि मसीह का ऐसा चित्र था जो उसको गहराई में तथा मृत्यु की गहराई में चित्रित करता है। अन्न बलि यीशु मसीह की मानवता को उसके सर्वांग सौंदर्य एवं सिद्धता में प्रकट करता है। मित्रों, जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे, यह आपको रोटी बनाने के एक नुस्खा जैसा लगेगा, और वास्तव में ऐसा है भी। यह दरअसल एक अन्न बलि भेंट है। हमारे ऑथराइज्ड वर्सन बाइबल अर्थात पुराने अनुवाद में इसे मांस बलि कहा गया है, जो हमारे लिए आज उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मांस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें रक्त बहाना बिल्कुल भी नहीं है, अतः यह अन्य भेंट या बलि से भिन्न है। तो भी कुछ भेंट जिनमें रक्त शामिल है, उसके साथ यह भेंट सामान्यतः दी गई है। यह अन्न बलि पकाकर अथवा बिना पकाए भी चढ़ाते थे। हारून और उसके पुत्र भी भेंट में से कुछ अपने लिए रखते थे, और हारून के घराने के सभी पुरुषों के द्वारा खाया जाता था। मित्रों, यह भोज अथवा अन्न बलि यीशु मसीह की मानवता को उसकी पूर्ण सिद्धता में दिखाता है। उसके ईश्वरत्व की चर्चा इसमें नहीं है, उसकी मानवता सिद्ध थी और वह भी एक सिद्ध मनुष्य था। परमेश्वर का लक्ष्य मनुष्य के लिए यीशु मसीह में पूर्ण होता है। वह दूसरा मनुष्य है परंतु अंतिम आदम है। इसके बाद कोई और आदम नहीं होगा, परंतु मनुष्य अवश्य है जो उसके सदृश ही बने हैं। वह अंतिम आदम है जो नए लोगों का प्रधान है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में हम पाते हैं। मित्रों, वर्तमान जगत में मानव जिस रूप में आज है, वह ईश्वर के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी असफलता या एक भयंकर भूल है। क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? इस बिंदु पर धर्मशास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है। सब भटक गए हैं, मूल भाषा में नष्ट भ्रष्ट हो गए। सबके सब निकम्मे बन गए हैं, और सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 12 और 23 पद में हम पाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के पालन करने के आधार पर परमेश्वर हमें नहीं बचा सकता। इसका साधारण कारण है कि परमेश्वर हमारी त्रुटियों या गलतियों या कमियों को जानता है। हम नियमों के पूर्णतः पालन नहीं कर सकते हैं। हम उसे पूरी सिद्धता से प्रसन्न नहीं कर पाते, और परमेश्वर हमें हमारे दोषों के कारण नहीं बचा सकता। वह एक पवित्र ईश्वर है और सिद्ध धार्मिकता और पूर्णता की मांग करता है। अपूर्णता अर्थात दोष व कमी में ही हम अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट उसे कर सकते हैं, अतः मानवता एक असफलता है। शांति का मार्ग उन्होंने नहीं जाना, यही प्रत्येक दिन के समाचार पत्रों का संदेश है। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़ाई और हिंसा मानव के हृदय में बसी है। शांति प्रदर्शनों को सुनकर व देखकर हंसी आती है, जिसका अंत उपद्रव से होता है। अपनी जबरदस्त शक्ति से मानव अपने भयानक विनाश के छल कपट वाले हथियारों या अवजारों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित ही मानव जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। मित्रों, मानव के लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक अन्य लक्ष्य है। यदि आप उसके मन की बात को जानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु की ओर देखें। यहाँ एक पुरुष है जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। उसके मनुष्यत्व की एक महिमा थी। यीशु की सर्वांग सुंदरता सचमुच में मधुर सुगंध थी। उसका आगमन महिमामय था। उसका साथ रहना एक आशीष थी। उसका प्रस्थान एक आशीर्वाद था। उसकी रमणीयता ने संसार को एक नई आशा से भर दिया और मानव को एक आदर्श प्रदान किया। इस भेंट बलिदान के दो मुख्य पहलू हैं, संघटक अथवा अंश। वे अंश जो सम्मिलित हैं और वे अंश जो शामिल नहीं किए गए हैं। आइए हम इसकी रूपरेखा को देखें। अन्न बलि, ख्रीस्ट का सर्वांग सौंदर्य, अध्याय 2 उसके अ में हम पाते हैं मिलाया परंतु पकाया नहीं, पद 1-3। ब में मिलाया और पकाया भी, पद 4-13 में। स, अन्न की बालों का पहला फल, तेल उंडेल कर लोबान उस पर रखा, पद 14-16 में। ड, अन्न बलि का नियम या विधान, अध्याय 6:14-23 पद में। अब हम देखते हैं मिलाया परंतु पकाया नहीं, अध्याय 2 उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। मित्रों, अन्न बलि मैदा का चढ़ावा था। बढ़िया मैदा उन दिनों अधिक प्रचलित नहीं था। हमारे देश में आजकल जैसी मैदे की बड़ी बड़ी चक्की मिल नहीं थी, परंतु वे इसे पत्थर के पाटों की बनी हाथ की चक्की से तैयार करते थे। बाल में से दाने निकालने के लिए मूसल से कूटते थे और यदि चक्की के पाट ठीक ना हो अथवा लापरवाही बरती गई व जल्दी से पिसाई की गई तो वहां बड़ा मोटा मैदा निकलता था। यदि अच्छा मैदा तैयार करना हो तो बहुत समय लगता था। इस अन्न बलि भेंट के लिए अच्छा मैदा तैयार करने में बहुत परिश्रम और समय लगता था। मित्रों, इससे हमें प्रभु यीशु के व्यक्तित्व का कुछ आभास मिलता है। वर्तमान काल में इसके लिए उपयुक्त शब्द पूर्ण योग संगठित व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वे बहुत सामान्य साधारण व्यक्ति थे। दरअसल मेरे विचार से तो वे अपनी तरह के एक अनोखे व्यक्ति थे जो इस संसार में पैदा हुए। पाप के कारण तो मानव जाति के सभी लोग गोबर गणेश, बोझिल और अनियमित हैं। हमारे व्यक्तित्व का कोई न कोई एक भाग असाधारण रूप से दूसरे की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। कॉलेज के दिनों में मैं असाधारण मनोविज्ञान का विद्यार्थी था और अंतिम दिनों में एक दिन मैं उस विभाग के प्रोफेसर से भेंट करने गया और उसने बातचीत में बताया कि असामान्यता के प्रत्येक प्रकार के रोगों के बारे में निदान शास्त्र में मैंने पाया कि इस रोग के प्रायः सभी लक्षण हम में पाए जाते हैं। मेरे इस कथन को सुनकर वे खूब हंसे और मुझसे बोले, मैं आश्चर्यचकित था कि तुम कब आओगे, सारी कक्षा तो आ चुकी थी। उन सब में ये लक्षण थे और मुझ में भी। तुम जानते हो हम सभी ऐसा करते हैं। हाल ही में एक अग्रगणीय मनोवैज्ञानिक ने सारी मानवता को थोड़ा अलग अर्थात गलत बताया। हम सभी थोड़ा सा भटक गए हैं। प्रभु यीशु ही केवल सामान्य व्यक्ति है। मित्रों, कृपया ध्यान दें कि बाइबल में पाए जाने वाले मनुष्य के चरित्र में कितना उतार चढ़ाव है। शिमसोन महान शारीरिक कृत्यों को पूरा करने में समर्थ था, परंतु शायद मन और इच्छा शक्ति के मामले में कमजोर था। वास्तव में वह एक मेहरा था। पौलुस बौद्धिक भीमकाय मनुष्य था, परंतु शरीर से निर्बल था। शिमोन पत्रस उसकी भावनाओं से इतना अधिक ओतप्रोत था कि वह कहता है कि वह मसीह के लिए मरेगा, परंतु शीघ्र ही उसका इनकार भी करता है, जो उसकी संकल्प शक्ति के दायरे को प्रकट करता है। शाउल राजा दृढ़ प्रतिज्ञा और हठी था, ईश्वर के सामने घुटने टेकने में आज्ञाकारिता में असफल ठहरा। ये सभी लोग पिंड स्वरूप थे। उनका व्यक्तित्व बेडोल था। उनके व हम सबके विपरीत प्रभु यीशु संतुलन चरित्र के व्यक्ति थे। उनके चरित्र के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य बनाए थे। वे मंदिर से लेन देन करने वालों को बाहर निकाल सकते थे और छोटे बच्चों को अपनी गोद में प्यार से बैठाते थे। उनकी 12 वर्ष की आयु में ही वे धर्म गुरु उनकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे। जब शिक्षा देते तो लोग अचंभा करके कहते, इसने कभी पढ़ा नहीं, तब इसे शास्त्र का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 15 पद में हम पाते हैं। पर तो भी प्रभु यीशु ने कभी भी अपनी बुद्धि को उसके किसी भी न्याय का आधार नहीं बनाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह कभी भी उसके चरित्र की कसौटी नहीं थी। वह पिता की इच्छा पूरी करने आए और यही केवल उसके कार्यों का प्रेरणा स्रोत था। प्रभु यीशु लाजर को कब्र पर व यरूशलेम नगर की उदासीनता को देखकर रोते हैं और साथ ही वे लाजर को मुर्दों में से जिलाते व यरूशलेम के लिए महादंड की घोषणा करते हैं जो शीघ्र ही पूरा भी हुआ। वे उनकी भावनाओं से प्रेरित नहीं होते, वे स्वेच्छा शक्ति से भी प्रभावित नहीं थे, परंतु फिर भी मरने के लिए यरूशलेम तक गए। सभी समय उनके मुख से यही निकलता था, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यूहन्ना 6 उसका 38 पद। उसका स्वयं इच्छा शक्ति वाला स्वभाव उसके कार्यों के लिए मार्गदर्शन नहीं था, उसमें सामंजस्य था। हम सब टेढ़े मेढ़े व असमान हैं। मित्रों, वह उस पर तेल उंडेलेगा। जैतून तेल का प्रयोग पवित्र आत्मा के लिए हुआ है। ध्यान दें, यहां तेल उंडेलने का जिक्र है, पर 4 और 15 पद में तेल सम्मिश्रित और पद 6 में उस पर तेल उंडेलना का प्रयोग है। पद 7 में तेल में है, चढ़ावा को तेल में डुबोना है। चढ़ावे में तेल एक प्रमुख भाग है और भिन्न भिन्न प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। प्रभु यीशु के मानव जीवन में पवित्र आत्मा की प्रमुखता ध्यान देने लायक है। वह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। लुका के सुसमाचार 1:35 पद में सम्मिश्रित तेल है। उसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से तेल उंडेलना है। मत्ती 3:16-17 पद में वह आत्मा द्वारा ले जाया गया, ऊपर तेल डालना है। मार्कुस 1:12 पद, उसने शिक्षा दी, आश्चर्यकर्म किए और पवित्र आत्मा की शक्ति से समर्पित भरपूर आत्मा। यूहन्ना 3:34, मत्ती 12:28। मित्रों, यदि प्रभु यीशु को उसके सिद्ध मानवता में इतना अधिक पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितनी अधिक आवश्यकता होगी। हम स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोबान बनाने का एक रहस्यमय फार्मूला है। यह एक सुगंधित पदार्थ है जो खुशबू या मिश्रित था, परंतु इसमें कुछ अंतर भी था। निर्गमन की पुस्तक 30:34 पद में इसके बारे में मिलता है। किसी पेड़ के पौधे का एक भाग संभवतः उसके छाल एवं पत्ती, जिससे सुगंध केवल पीसने, निचोड़ने व जलाने से निकलती थी। यह प्रभु यीशु के जीवन को बताती है। उसके जीवन के प्यास, सताव, दबाव की अग्नि से प्रज्वलित यह सुगंध प्रकट होती है। पिता ने यही सब देखकर कहा, जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके जीवन में एक विशेष सुगंध थी। हमारे जीवन में भी मसीह की सुगंध होना चाहिए, क्योंकि हम उसके लोग अर्थात उसके बच्चे हैं। मित्रों, हम लय व्यवस्था 2 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। अन्न बलि का एक भाग पुरोहितों को मिलता था। वे प्रत्येक वस्तु में से कुछ प्रतिशत प्राप्त करते थे। तत्पश्चात बचा हुआ मिलाकर वेदी पर भस्म कर दिया जाता था। हम 2 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और अन्य बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। मित्रों, इस तथ्य पर जोर दिया गया, यद्यपि इस बलि में रक्त का कोई भाग नहीं है, परंतु इसमें भी वेदी पर जलाना था। अधिक जोर अग्नि पर दिया गया है, जो पद 2:9-16 और अध्याय 6:15-17-18 पद में है। अब हम आगे देखते हैं, मिलाना एवं पकाना, पद 4-10 में लिखा हुआ है, और जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो, और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो, तो वह तेल में सने हुए अखमीरी मैदे का हो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्न बलि हो, तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। ये अन्नबलि की विधि के विस्तार पूर्वक निर्देशन है, और दरअसल सच पूछे तो रोटी पकाने के नुस्खे के समान है। स्वच्छ मैदा और अच्छा तेल के बारे में बार बार दोहराया गया है, और साथ ही अग्नि का भी जिक्र है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यहाँ अग्नि का संबंध नरक से बिल्कुल नहीं है। यह ईश्वर की पवित्र करने वाली शक्ति है जिसमें मसीह के जीवन में अधिक सुंदरता आई। विशेष तौर पर पद 9 में इसकी घोषणा प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन नाम से की गई है। उसकी सुंदरता दबाव से उभर कर आई। आपके और मेरे अनुभव में सुंदरता किसी दबाव के प्रभाव में आकर नहीं उभरती। कभी कभी कई मसीही लोग जब दबाव में होते हैं तो उनके मुंह से गाली व अपशब्द निकलते हैं, परंतु जितना अधिक दबाव उसके जीवन में आया उतना ही अधिक उसकी सुंदरता निखर कर आई। प्रभु यीशु यूं कह सके, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:29। मित्रों, अन्नबलि का बचा कुचा भाग सब हारून और उसके पुत्रों का था। विश्वासियों के लिए परमेश्वर पिता के साथ मसीह यीशु का बंटवारा एक बहुत सम्मान की बात है। उसमें आप क्या देखते हैं? क्या मधुरता उसमें पाई जाती है? क्या आपने उसके जीवन की सुंदरता और मधुरता का आनंद लिया है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरे यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:53-58 में। मित्रों, यदि आप और मैं अपने जीवन में मधुरता पाना चाहते हैं तो मसीह के साथ सहभागी होना पड़ेगा, निसंदेह शाब्दिक रूप से नहीं, वरना हम नरभक्षी कहे जाएंगे। हम विश्वास में भागीदारी हैं और अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे हम उसके साथ संभागी होते हैं कि उसके जीवन की सुंदरता एवं मधुरता हमारे जीवन को भी उसकी सुगंध से भर दे। हम लय व्यवस्था 2:11 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। मित्रों, इस भेंट बलि से जिन अंशों को अलग रखा गया है वे अंशों के मुकाबले जो शामिल किए गए कम महत्व के नहीं हैं। जिन दो का नाम उद्धृत है वे हैं खमीर व मधु अर्थात शहद। मित्रों, खमीर की चर्चा धर्मशास्त्र में बार बार हुई है। धर्मशास्त्र में खमीर का मतलब प्रत्येक स्थान पर बुराई के सिद्धांत से है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को फरीसियों के खमीर से सतर्क रहने को कहा। उनका मतलब यहाँ फरीसियों की शिक्षा और सिद्धांतों से था। बुरी शिक्षा खमीर के समान ही है। बुराई का सिद्धांत ही खमीर है। खमीर को अन्नबलि से दूर रखने को कहा गया है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि मसीह में कुछ भी बुराई नहीं है। प्रभु यीशु का जीवन निष्पाप था। शहद को भी अलग रखा गया है। इससे प्राकृतिक मिठास का पता चलता है। जैसे खमीर एक कटु पदार्थ है, यह भी कड़वा हो जाएगा। कई मसीही लोगों के बीच बड़े पवित्र दीख पड़ते हैं, रविवार में प्रसन्न रहते और मुस्कुराते हैं, सबों को भाई अथवा मेरे प्रिय कहकर संबोधित करते हैं। उनके चेहरे की चमक आश्चर्यजनक ढंग से साफ होती है, परंतु ऐसे ही लोग दूसरों को चुटकारी भरी जुबानों से अथवा चापलूसी करके बदनाम करते हैं। वे बंदूक से हत्या करने वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनका जीवन मधु से भी मीठा है। मित्रों, प्रभु यीशु ने सबको मित्र कहकर संबोधित किया। यीशु के जीवन में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं था। उसको मधु की मिठास दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही उसके शब्दों में कुछ खमीर था। उनकी भाषा व वचन साधारण लोगों को मान्य थे। 2 अध्याय उसके 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। मित्रों, यह बलि सुखद सुगंध थी, परंतु इसके लिए जरूरी नहीं था कि वह स्वादिष्ट बनाने के लिए पौष्टिक तत्व अंश जैसे खमीर अथवा प्राकृतिक मिठास के लिए शहद का प्रयोग करे। हम आगे लय व्यवस्था 2 उसके 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक एक ऐसा अंतिम अंश था जिसे अन्न बलि में मिलाया गया। नमक सुरक्षित पदार्थ है और खमीर के विपरीत है। खमीर विनाशकारी है, नमक सड़ने से बचाता है। वाचा का नमक आज भी अरब देश के लोगों के बीच इसलिए खाया जाता है क्योंकि यह विश्वास योग्यता, ईमानदारी और आज्ञा पालन में एक दूसरे को वाचा में बांधता है। नमक परमेश्वर और उपासक के बीच विश्वास योग्यता का चिन्ह या प्रतीक है। मसीह विश्वास योग्य है, उसके अनेकों नामों में यह भी एक नाम है। वह सच्चा और विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 उसके 11 पद में हम पाते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाया। हम भी ईश्वर के अनुग्रह के कारण स्वयं को उसे समर्पित करें। इस विषय हमें विश्वस्त बनना होगा। मसीही लोगों को पृथ्वी के नमक बनना है। ऐसा हम तब ही कर पाएंगे जब रोमियों के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद के अनुसार जीवित बलिदान स्वरूप ईश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। मित्रों, अब हम आगे देते हैं, पहली उपज की हरी बालें, तेल छिड़क कर व लोबान। लेवस्था की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अनबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अनबलि के लिए आग से झुलसाए हुए हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अनबलि हो जाएगा। और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। पहली फसल का पर्व लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 9 से 11 में वर्णित है। एक अन्न बलि था तथा यही पिंतेकोस्त पर्व ही है। आगे हम देखते हैं अन्न बलि की व्यवस्था। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 से 23 में अन्न बलि की व्यवस्था का ब्यौरा है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रातः और संध्या काल की अग्नि बलि या होम बलि के साथ साथ अन्न बलि का भी प्रावधान है। इसे हम निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 39 और 40 पद में पाते हैं। मित्रों, अन्न बलि प्रभु यीशु के समर्पण को प्रकट करता है। मसीह में विश्वासियों का समर्पण भी यही दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध मानवता का यह एक अद्भुत चित्रण है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है और आपने यह भी जान लिया है कि अन्न बलि प्रभु यीशु के समर्पण को दर्शाता है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। अपने एक शब्द द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही